तीसरा पहर था। ज्ञानशंकर दीवान खाने में बैठे हुए एक किताब पढ़ रहे थे कि कहार ने आकर कहा, बाबू साहब पूछते हैं कै बजे हैं। ज्ञानशंकर ने चुड़कर कहा, जा कायदे आपको नीचे बुलाते हैं, क्या सारा दिन सोते रहेंगे। इन महाशय का नाम बाबू ज्वाला सिंह था। ज्ञानशंकर के सहपाठी थे और आज ही इस जिले में डिप्टी कलेक्टर होकर आए थे। दोपहर इन दोनों मित्रों में बातचीत होती रही। ज्वाला सिंह रात भर के जगे थे, सो गए। ज्ञानशंकर को नींद नहीं आई। इस समय उनकी छाती पर सांप सा लौट रहा था। सबके सब बाजी लिए जाते हैं और मैं कहीं का ना हुआ। कभी अपने ऊपर क्रोध आता, कभी अपने पिता और चाचा के ऊपर। पुराना सौहार्द द्वेष का रूप धारण कर रहा था। यदि इस समय अकस्मात ज्वाला सिंह के पदच्युत होने का समाचार मिल जाता तो शायद ज्ञानशंकर के हृदय को सच्ची शांति होती। वह इस क्षुद्र भाव को मन में न आने देना चाहते थे। अपने को समझाते थे कि यह अपना अपना भाग्य है। अपना मित्र कोई ऊंचा पद पाए तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। किंतु उनकी विकलता इन सद विचारों में न मिटती थी और बहुत यत्न करने पर भी परस्पर संभाषण में उनकी लघुता प्रकट हो जाती थी। ज्वाला सिंह को विदित हो रहा था कि मेरी तरक्की इन्हें जला रही है, किंतु यह सर्वथा ज्ञानशंकर की ईर्ष्यावृत्ति का ही दोष न था। ज्वाला सिंह के बाद व्यवहार में वह पहले किसी स्नेहमय सरलता न थी, वरन उसकी जगह एक अज्ञात सहृदयता, एक कृत्रिम वात्सल्य और एक गौरवयुक्त साधुता पाई थी जो ज्ञानशंकर के घाव पर नमक का काम कर रही थी। इससे संदेह नहीं कि ज्वाला सिंह का यह दुह स्वभाव इच्छित न था। वह इतने नीच प्रकृति के पुरुष न थे, पर अपनी सफलता ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था। इधर ज्ञानशंकर इतने उदार न थे कि इससे मानव चरित्र के अध्ययन का आनंद उठाते। कहार के जाने के क्षण भर पीछे ज्वाला सिंह ऊपर से उतर पड़े और बोले, यार बताओ क्या समय है, जरा साहब से मिलने जाना है। ज्ञानशंकर ने कहा, अजी मिल लेना, ऐसी क्या जल्दी है। ज्वाला सिंह, नहीं भाई, एक बार मिलना जरूरी है, जरा मालूम तो हो जाए किस ढंग का आदमी है, खुश कैसे होता है। ज्ञान, वह इस बात से खुश होता है कि आप दिन में 3 बार उसके द्वार पर नाक रगड़े। ज्वाला सिंह ने हंसकर कहा, यह तो कुछ मुश्किल नहीं है, मैं 5 बार सिजदे किया करूँगा। ज्ञान, और इस बात से खुश होता है कि आप कायदे कानून को तिलांजलि दीजिए, केवल उसकी इच्छा को कानून समझिए। ज्वाला सिंह, ऐसा ही करूँगा। ज्ञान, इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, किसी अभियुक्त को भूल कर भी छोड़ा तो बहुत बुरी तरह खबर लेगा। ज्वाला, भाई तुम बना रहे हो, ऐसा भला क्या होगा। ज्ञान, नहीं विश्वास मानिए, वह ऐसा ही विचित्र जीव है। ज्वाला, तब तो उसके साथ मेरा निर्वाह कठिन है। ज्ञान, जरा भी नहीं, आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, कल को उसके इशारों पर नाचेंगे। इस घमंड में मत रहिए कि आपको अधिकार प्राप्त हुआ है, वास्तव में आपने गुलामी लिखाई है, यहाँ आपको आत्मा की स्वाधीनता से हाथ धोना पड़ेगा, न्याय और सत्य का गला घोटना पड़ेगा, यही आपकी उन्नति है और सम्मान के साधन है। मैं तो ऐसे अधिकार पर लात मारता हूँ, यहाँ तो अल्लाह ताला भी आसमान से उतर आए और अन्याय करने को कहे तो उनका हुक्म न मानो। ज्वाला सिंह समझ गए कि यह जले हुए दिल के फफोले हैं। बोले, अभी ऐसी दून की ले रहे हो, कल को नामजद हो जाओ तो यह बातें भूल जाए। ज्ञानशंकर, हाँ बहुत संभव है, क्योंकि मैं अभी तो मनुष्य हूँ, लेकिन संयोग से मेरे इस परीक्षा में पड़ने की कोई संभावना नहीं है, और हो भी तो मैं आत्मा की रक्षा करना सर्वोपरि समझू। ज्वाला सिंह गर्म होकर बोले, आपको यह अनुमान करने का क्या अधिकार है कि और लोग अपनी आत्मा का आपसे कम आदर करते हैं। मेरा विचार तो यह है कि संसार में रहकर मनुष्य आत्मा की जितनी रक्षा कर सकता है उससे अधिक उसे वंचित नहीं कर सकता। अगर आप समझते हैं कि वकालत या डॉक्टरी विशेष रूप से आत्मरक्षा के अनुकूल हैं तो आपकी भूल है। मेरे चचा साहब वकील हैं, बड़े भाई साहब डॉक्टरी करते हैं, पर वह लोग केवल धन कमाने की मशीनें हैं। मैंने उन्हें कभी असत सत के झगड़े में पड़ते हुए नहीं पाया। ज्ञानशंकर, वह चाहें तो आत्मी की रक्षा कर सकते हैं। ज्वाला सिंह, बस उतने ही जितने की एक सरकारी नौकर कर सकता है, वकील को ही लीजिए। यदि विवेक की रक्षा करें तो रोटियां चाहें भले खाएं, समृद्धशाली नहीं हो सकता। अपने पेशे में उन्नति के लिए उसे अधिकारियों का कृपा पात्र बनना परमावश्यक है, और डॉक्टरों का तो जीवन ही रईसों की कृपा पर निर्भर है, गरीबों से उन्हें क्या मिलेगा। द्वार पर सैकड़ों गरीब रोगी खड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ किसी रईस आदमी का पहुँचा वह उनको छोड़कर पीटन पर सवार हो जाते हैं। इसे मैं आत्मा का स्वाधीनता नहीं कर सकता। इतने में गौस खां, गिरधर महाराज और सुक्खू ने कमरे में प्रवेश किया। गौस खां तो सलाम करके फर्श पर बैठ गए, शेष दोनों आदमी खड़े रहे। लाला प्रभात शंकर बरामदे में बैठे हुए थे। पूछा, आसामियों को घी के रुपए बांट दिए? गौस खां, जी हाँ, हुजूर के इकबाल से सब रुपए तकसीम हो गए, मगर इलाके में चंद आदमी ऐसे सरकश हो गए हैं कि खुदा की पनाह, अगर उनकी तभी न की गई तो एक दिन मेरी इज्जत में फर्क आ जाएगा, और क्या अजब है कि जान से भी हाथ धोऊं। ज्ञान शंकर विस्मित होकर, देहात में भी यह हवा चली है? गौस खान ने रोने सूरत बना कहा, हुजूर कुछ न पूछिए, गिरधर महाराज भाग न खड़े होते तो उनकी जान की खैरियत नहीं थी। ज्ञान, उन आदमियों को पकड़ के पिटवाए क्यों नहीं? गौस, तो थानेदार साहब के लिए थैली कहाँ से लाता? ज्ञान, अजी आप लोगों को तो सैकड़ों हथकंडे मालूम है, किसी भी शिकंजे में कस लीजिए। गौस, हुजूर मौरूसी आदमी है, असामी है, यह सब जमींदार को कुछ नहीं समझते, उनमें एक का नाम मनोहर है, 20 बीघे जोतता है और केवल 50 लगान देता है। आज उसे अराजी का किसी दूसरे आसामी से बंदोबस्त हो सकता तो सब कहीं नहीं गए थे। ज्ञान शंकर ने चचा की ओर देख कर पूछा, आपके अधिकांश असामी दखलाकार क्यों हो गए? प्रभात शंकर ने उदासीनता से कहा, जो कुछ किया होगा इन कारिंदों ने किया होगा, मुझे क्या खबर? ज्ञान शंकर व्यंग से, तभी तो लायका चौपट हो गया। प्रभात शंकर ने झुंझलाकर कहा, अब तो भगवान की दया से तुमने हाथ पर संभाले इलाके का प्रबंध क्यों नहीं करते? ज्ञान, आपके मारे जब मेरी कुछ चले तब तो? प्रभा, मुझसे कसम ले लो जो तुम्हारे बीच में कुछ भी बोलो, यह काम बहुत दिन हो गए इसके लिए लोलुप नहीं हूँ। ज्ञान, तो फिर मैं भी दिखा दूंगा कि सुप्रबंध से क्या हो सकता है। इसी समय कादिर खां और मनोहर आकर द्वार पर खड़े हो गए। गौस खां ने कहा, हुजूर यह वही असामी है जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था। ज्ञान शंकर ने मनोहर के क्रोध से देख कर कहा, क्यों रे, जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है, 100 की जमीन 50 रुपये में जोतता है, उस पर जब थोड़ा सा बल खाने का अवसर आया तो जामे से बाहर हो गया। मनोहर की जबान बंद हो गई, रास्ते में जितनी बातें कादिर खां ने सिखाई थी वह सब भूल गई। ज्ञान शंकर ने उसी स्वर में फिर कहा, दुष्ट कहेगा तो समझता होगा कि मैं दखलकार हूँ, जमींदार ऐसा कर ही क्या सकता है, लेकिन मैं तुझे दिखा दूंगा कि जमींदार क्या कर सकता है, तेरे इतना हियाव है कि तू मेरे आदमियों पर हाथ उठाए। मनोहर निर्बल क्रोध से कांप और सोच रहा था, मैंने घी के रुपए नहीं लिए, ये कोई पाप नहीं है, मुझे लेना चाहिए था, दबाव के भय से नहीं, केवल इसलिए कि बड़े सरकार हमारे ऊपर दया करते थे। उसे लज्जा आई कि मैंने ऐसे दयालु स्वामी की आत्मा के साथ कृतज्ञता की, किंतु इसका दंड गाली और अपमान नहीं है, इसका अपमानाहत हृदय उत्तर देने के लिए व्यग्र होने लगा, किंतु कादिर ने उसे बोलने का अवसर न दिया। बोला, हुजूर हम लोगों की मजाल ही क्या है कि सरकार के आदमियों के सामने सिर उठा सके, हाँ अपन गवार ठहरे बातचीत करने का सहूर नहीं है, वो जो डुपन की बातें मुंह से निकल जाती है, क्या हम नहीं जानते कि हुजूर चाहें तो आज हमारा कहीं ठिकाना न लेंगे? अब तो यही विनती है कि जो खता है उसकी माफ़ी दी जाए। लाला प्रभा शंकर को मनोहर पर दया आ गई, सरल प्रकृति के मनुष्य थे, बोले, तुम लोग हमारे पुराने असामी हो, क्या नहीं जानते हो कि असामियों पर सख्ती करना हमारे यहाँ का दस्तूर नहीं है, ऐसा ही कोई काम आ पड़ता है तो तुमसे बिगाड़ ली जाती है और तुम हमेशा उसे हंसी खुशी देते रहे हो, अब भी इस तरह निभाते चलो, नहीं तो भाई अब ज़माना नाजुक है, हमने तो भली बुरी तरह निभा दिया मगर इस तरह के लड़कों से ना निभेगी, इनका खून गर्म उठा रहा, इसीलिए सब संभल कर रहो, 4 बातें सह लिया करो, जाओ फिर ऐसा काम ना करना, घर से कुछ खा कर तो चले हो ना होगे, दिन भी चढ़ाया यहीं खा पी कर विश्राम करो, दिन ढले चले जाना। प्रभात शंकर ने अपने निर्द्वंद स्वभाव के अनुसार इस मामले को टालना चाहा, किंतु ज्ञान शंकर ने उनके तीव्र नेत्रों से देख कर कहा, आप मेरे बीच में क्यों बोलते हैं, इसी नरमी ने तो इन आदमियों को शेर बना दिया है, अगर आप इस तरह मेरे काम में हस्तक्षेप करते रहेंगे तो मैं इलाके का प्रबंध कर चुका, अभी आपने वचन दिया है कि इलाके में कोई सरोकार न रखूंगा, अब आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभात शंकर यह तिरस्कार न सहसे रुष्ट होकर बोले, अधिकार क्यों नहीं है, क्या मैं मर गया हूँ? ज्ञान शंकर, नहीं आपको कोई अधिकार नहीं है, आपने सारा इलाका चौपट कर दिया, आप क्या चाहते हैं कि जो बचा कुचा है उसे भी धूल में मिला दें? प्रभात शंकर ने कलेजे में की चोट लगी, बोले, बेटा ऐसी बातें कर क्यों दिल दुखाते हो, तुम्हारे पूज्य पिताजी मर गए लेकिन अभी मेरी बात नहीं दुलकी, अब तुम मेरी जुबान बंद कर देना चाहते हो, किंतु यह नहीं हो सकता कि अन्याय देखा करूं और मुंह न खोलूं, जब तक जीवित हूं तुम ये अधिकार मुझसे छीन नहीं सकते। ज्वाला सिंह ने दिलासा दिया, नहीं साहब आप घर के मालिक हैं, यह आपकी गोद के पले हुए लड़के हैं, इनकी अबोध बातों पर ध्यान न दीजिए, इनकी भूल है जो आपको कहते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको सब कुछ अधिकार है, आप घर के स्वामी हैं। गौस खां ने कहा, हुजूर का फरमाना बहुत दुरुस्त है, आप खानदान के सरपरस्त और मुरब्बी हैं, आपके मनसब से किसे इनकार हो सकता है। ज्ञान शंकर समझ गए कि ज्वाला सिंह ने मुझसे बदला ले लिया। उन्हें यह खेद न हुआ कि ऐसी अपने मैंने क्यों की। खेद केवल यह था कि ज्वाला सिंह यहाँ बैठे थे और उनके सामने वह असज्जनता नहीं प्रकट करना चाहते। बोले, अधिकार से मेरा यह आशय नहीं था कि जो आपने समझा। मैं केवल यह कहना चाहता था कि जब आपने इलाके का प्रबंध मेरे सुपुर्द कर दिया है तो मुझे को करने दीजिए। यह शब्द अनायास मेरे मुंह से निकल गया। मैं इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। भाई ज्वाला सिंह, मैं चाचा साहब का जितना अदब करता हूँ उतना अपने पिता का भी नहीं किया। मैं स्वयं गरीब आदमियों पर सख्त करने का विरोधी हूँ। इस विषय में आप मेरे विचारों से भलीभांति परिचित हैं, किंतु इसका यह आशय नहीं कि दीन पालन की धुन में इलाके से ही हाथ धो बैठे। पुराने जमाने की बात और थी, तब जीवन संग्राम इतना भयंकर न था, हमारी आवश्यकताएं परिमित थी, सामाजिक अवस्था इतनी उन्नत न थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भूमि का मूल्य इतना चढ़ा हुआ न था। मेरे कई गांव 2-2 हज़ार पर बिक गए थे, उनके दाम आज 20-20 हज़ार लगे हुए हैं। उन दिनों आसामी मुश्किल से मिलते थे, अब एक एक टुकड़े के लिए 100-100 आदमी मुंह फैलाए हुए हैं। यह कैसे हो सकता है कि आर्थिक दशा का असर जमींदार पर न पड़े। लाला प्रभा शंकर को अपने अप्रिय शब्दों का बहुत दुख हुआ था। जिस भाई को वह देवतुल्य समझते थे उसी के पुत्र से द्वेष करने पर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। बोले, भैया इन बातों को तुम जितना समझोगे मैं बूढ़ा आदमी क्या समझूंगा। तुम घर के मालिक हो, मैंने भूल की कि बीच में कूद पड़ा। मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी के सिवा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे घर को संभालो। थोड़ी देर तक सब लोग चुपचाप बैठे रहे। अंत में गौस खां ने कहा, पूछा, हुजूर मनोहर के बारे में क्या हुक्म होता है। ज्ञान शंकर, इजाफा लगान का दावा कीजिए। कादिर, सरकार बड़ा गरीब आदमी मर जाएगा। ज्ञान शंकर, अगर इसकी जोत में कुछ सिकमी जमीन हो तो निकाल लीजिए। कादिर, सरकार बेचारा बिना मारे मर जाएगा। ज्ञान शंकर, इसकी परवाह नहीं, असामियों की कमी नहीं है। कादिर, हुजूर। ज्ञान शंकर, चुप रहो, मैं तुमसे हुज्जत नहीं करना चाहता। कादिर, सरकार जरा। ज्ञान शंकर, बस कैदिया के जबान मत खोलो। मनोहर अब तक चुपचाप खड़ा था। प्रभाशंकर की बात सुनकर उसे आशा हुई थी कि यहाँ आना निष्फल नहीं हुआ। उनकी विनयशीलता ने उसे वशीभूत कर लिया था। ज्ञान शंकर के कटु व्यवहार के सामने प्रभाशंकर की नम्रता उसे देवोचित प्रतीत होती थी। उसके हृदय में उत्कंठा हो रही थी कि अपना सर्वस्व लाकर इनके सामने रख दूं और कह दूं कि यह मेरी ओर से बड़ी सरकार की भेंट है। लेकिन ज्ञान शंकर के अंतिम शब्दों ने इन भावनाओं को प्रदलित कर दिया। विशेषतः कादिर मियाँ की अपमान उसे असह्य हो गया। तेवर बदलकर बोला, दादा इस दरबार से अब दया धर्म उठ गया। चलो भगवान की जो इच्छा होगी वह होगा। जिसने मुँह चीरा है वह खाने को भी देगा, भीख नहीं तो परदेश तो कहीं नहीं गया है। यह कहकर उसने कादिर का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचता हुआ दीवान खाने से बाहर निकल गया। ज्ञान शंकर को इस समय क्रोध आ रहा था कि यदि कानून का भय न होता तो वह उसे जीता चुनवा देते। अगर इसका कुछ अंश मनोहर को डांटने फटकारने में निकल जाता तो कदाचित उसकी ज्वाला कुछ शांत हो जाती, किंतु अब हृदय में खोलने के सिवा उसके निकलने का रास्ता न था। उनकी दशा उस बालक की सी हो रही थी जिसका हमजोली उसे दांत काटकर भाग गया हो। इस ज्ञान से उन्हें शांति न होती थी कि मैं इस मनुष्य के भाग्य का विधाता हूँ और उसे पैरों तले कुचल सकता हूँ। क्रोध को दुर्वचन से विशेष रुचि होती है। ज्वाला सिंह मौनी बने बैठे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ज्ञान शंकर में इतनी दयाहीन स्वार्थपरता कहाँ से आ गई। अभी क्षण भर पहले यह महाशय न्याय और लोक सेवा का कैसे महत्वपूर्ण वर्णन कर रहे थे। इतनी ही देर में काया पलट, विचार और व्यवहार में इतना अंतर। मनोहर चला गया तो ज्ञान शंकर से बोले, इजाफा लगान का दावा कीजिए तो उसकी ओर से उजरदारी रहोगी। आप केवल एक असामी पर दावा नहीं कर सकते। ज्ञान शंकर, हाँ यह ठीक कहते हैं। खां साहब आप इन असामियों की एक सूची तैयार कीजिए जिन पर कायदे के अनुसार इजाफा हो सकता है। क्या हरज है लगे हाथ सारे गाँव पर दावा हो जाए। ज्वाला सिंह ने मनोहर की रक्षा के लिए यह शंका की थी। इसका यह विपरीत फल देख कर उन्हें फिर कुछ कहने का साहस न हुआ, उठकर चले गए।